सो स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल बाइट्स में आपका स्वागत है। यू आर वार्मली वेलकम डियर। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेलिबेसी द ट्रू पार्ट टू गॉड रियलाइजेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिबेसी, प्रेजेंट डे क्राइसिस एंड द रोल ऑफ ब्रह्मचर्य। इफ यू व्यू इंडियन सोसाइटी टुडे फ्रॉम बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, वी फाइंड दैट आवर सोसाइटी इज फेसिंग एन अलार्मिंग सिचुएशन। Under restraint, sexual indulgence within the outside of the marriage has resulted in startling increase of the population that has caused many people to fall below the poverty line. On Thursday, May 11, 2000, a baby girl born at the Safdarganj Hospital brought India's population total to 1 billion people from 550 million in 1975. In merely 25 years, since this booklet was originally published, India population was nearly doubled. Back 50% of the people, or 275 million, lived below the poverty line. According to the article in the Blitz, dated 1st November 1975, the number of people below the poverty line today has, in spite of stupendous effort to reduce it, remain about the same, and according to the same sources, even increased to 1/3 of the total population, or 330 million people. At the Union Health Ministry in New Delhi, this population clock ticking relentlessly, 33 births per minute, nearly 2,000 births an hour, closely to 40,000 births a day, over 17 million births in a year. However, even though the death rate is also high, 16 deaths per minute, nearly 8.5 million persons per year, population growth continues to underlie all economic, environmental and social problems. It is well known that the country's resources cannot keep pace with the rapid rise in population mentioned above. Housing, trade, industry, employment and education cannot be provided to all at a rate that keep up with it. That all plans to improve the standards of living of the poor are in fact in the vein. Thank you. Wait for the next series of celibacy. Thank you. So, celibacy talks mein aapka swagat hai. So, we are continuing our second part here. Over half of India's population, 65%, live in villages, but a good third lives in cities. 16 million people live in Mumbai alone, with about 500,000 more moving there every year. 60% of these lives in the slums. Another 1 lakh people live on the streets, in empty sewer pipes or in the corner of the railway stations, including children, in tens of thousands of them. Many of them orphans, many of them below age 5, and in Calcutta the scene is even more ghastly. Even in India's garden city, Bangalore, there are over 400 slums and nearly 500,000 slum dwellers. Those living below the poverty line often do not have proper food or clothing. In a Human Development Report 2000, India fell from 115 to 124 position in the Human Index. Nearly a quarter of India's people suffer from malnutrition. There are over 150,000 women and children living with HIV/AIDS. There are around 10,000 persons suffering with malaria and another 10,000 with tuberculosis. If you were born in India, you have a 17% chance of surviving to the age of 40. NDTV reports in November 2002 that 55 years after independence, thousands of destitute people in Uttar Pradesh fail to get even one square meal a day. Nearly 12 to 60% people in 770 cities and towns in UP live below the poverty line, with employment and housing schemes failing to reach those that need them most. Every winter morning is a fresh fight against them, against hunger. For most destitute people, this ends at the gate of the temple where devotees distribute prasad. They live outside the religious places, trying to survive on intermittent meals, and are so weakened by hunger that even a cold, common cold, can kill them. So these are the result of uncontrolled sex, and the increasing population has caused this also. And also, if we put celibacy, then these all can be solved. Thank you. So Desi Talks Part 3 में आपका स्वागत है. ऑफ कोर्स इंडियाज फ्लाइट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द इंटायर ग्लोब व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्रिटिकल पीरियड वर्ल्ड वाइड. वन इन एवरी सिक्स पर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड गोस टू बेड हंग्री एट नाइट. एंड ऑल्सो आई शेयर वन फैक्ट दैट वन इन एवरी सिक्स पीपल इज एन इंडियन. ओके इवन आफ्टर हार्ड डे वर्क 13 million people in southern Africa are on the brink of starvation due to both crop failures and to significant loss of adult population as a result of AIDS. In Afghanistan, where many people subsist on a bread made of barley and grass, even without famine, more than 1 in 5 children die before the age of 5. And the average life expectancy is merely 44. He reports Barry Brick of the Age newspaper, a new publications of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, predicts severe hardship for millions of workers in Asia who are just one paycheck away from extreme poverty as a result of economic shockwaves still reverberating from the sudden devaluation of the regional currencies in 1997. So thank you for coming and listening to Celestial Talks Part 3. थैंक यू. सो सेलिब्रिटी टॉक्स पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है. सो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2002 रिपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड सेड दैट इन ऑर्डर टू मीट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ हाफिंग ग्लोबल पॉवर्टी एंड हंगर By the year 2015, action must be taken urgently to help women avoid unwanted pregnancies, combat poor reproductive health, and tackle other aspects of the population poverty dynamics such as illiteracy, gender discrimination, and unsustainable development. In India, the government has since 1947 been urgently promoting incentives and providing means for birth control throughout the country at all levels. These efforts are limited success, even though a snail pace. So we will end here. Thank you for listening. Wait for the next part.
Hello everyone. So Celibacy Talks में आपका स्वागत है. So the State of World Population 2002 report from the United Nations Population Fund asserts that in order to meet the Millennium Development Goals of halving global poverty. I think we have read this. Okay, how even before that time the Supreme God, God Krishna, declare that God Krishna's biggest devotee, Shiva, declared that the whole world in general and India in particular to be facing a situation of increasing emergency. In fact, issued a divine ordinance for all human beings, decreeing that without delay, complete birth control be implemented by means of the observance of Ramacharya. I guess that the best method of achieving cooperation with this God and with this ordinance is education and persuasion. And he guaranteed that if a person learns about his or her original spiritual nature and is persuaded or inspired to adopt celibacy in life, then not only will this help to elevate the grave situation facing the country and the world, but the person will gain great vigor, health, morality, mental strength, and strength of character. So it behoves us, it even incumbent upon us, to have nothing further to do with sexual gratification for the remaining years of lives in order to ensure the well-being of the moral elevation. Should we not feel deeply moved by the suffering of so many million peoples who want food, are longing for death to end their misery? Can our compassion for them not overcome our own selfish passion? Do our hearts not ache to see the children crying piteously for milk to drink, crust of bread to eat, or wax to shield their bodies from the cold? Have we become insensitive to the sorrows of the countless of our human family who are hungry, naked, diseased, and unemployed? Do we have no responsibility towards reducing their suffering, or at least not adding additional mouths to feed to the biosphere? How can we think of bringing more children into a world with disease, sorrow, poverty, and suffering? are rampant, where so many of our young are committing suicide to escape a life of hell. This book explains the importance of Brahmacharya from the spiritual, economical, social, and scientific point of view, and is listened for history. It is a translation of a book written in Hindi on subject by the author. Thank you.
Celibacy Talks 5 में आपका स्वागत है. So, Celibacy Talks में अब हम पढ़ने जा रहे हैं. Now we are going to study the importance of Brahmacharya. Judged from spiritual, scientific, and psychological and social angles, it is a matter of common observation that people in general do not really understand the importance of Brahmacharya. Nowadays, at religious centers and discourses, people are advised, even exhorted, to renounce attachments and not to be greedy. But no mention of continence is made at all. And even if it happens to be mentioned, it is only secondary, as if it is meant to be observed by recluses only. Violation of Brahmacharya and indulgence in sex gratification has to be ceased to be included among the 5 well-known vices of man. But no one can deny that sex lust is a main cause of so many of the predicaments in our daily life, in society, and in matters of business, administration, financial, etc. Failure to observe Brahmacharya according to the tenets of spiritual knowledge blocks an aspirant's progress in the sphere of spirituality. It is true that while praising God, they call him the uplifter of the fallen, but they do not make efforts to abandon district riding vice in order to become pure by observing continence. It is true that they admit that lust, anger, and greed are great ways to hell, but they do not do anything to keep away from the gateway of hell and enter the gates of heaven by observing Brahmacharya. Thank you for listening to the lecture. Thank you. So, Brahmacharya Talk 7 May. I welcome you all. Okay. Welcome you all. So, possibly all this is due to the fact that they have no clear idea of how great is the loss that sex lust causes and how great is the gain resulting from chastity. They do not at all know that this vice is plundering all their treasures, nor ever they think that if they observed celibacy during the few years left to them now, they could have all heavenly joy. But the truth that they can have the keys of heavenly bliss and rendered themselves worthy of God's love through observance of celibacy has not yet dawned on them. The book has been written to bring out the gains resulting from the observance of continence and the losses due to lust. I have expounded the importance of celibacy not only from the standpoint of spirituality in daily life, but also from the social and economic point of view. Besides presenting opinions of experts on biology, physiology, and medicines, in the early chapter I have stated that point of views of monks, saints, devotees, acharyas, rishis, etc., so that religious-minded seekers find inspiration therein. Reference, though not detailed, has been made to psychology on this topic, besides mention of certain historical examples to illustrate the fact that this vice has raised to the ground great personages, countries, and cultures. Thank you.
So, Brahmacharya Talks 8 mein aapka swagat hai.
It has been observed that some people relying on the science of biology regard sexual gratification as natural, while others go so far as to declare that it is a law of nature, a law enforced sometimes beyond memory and applicable to the world as created by God. There are those who consider it to be one of the invaluable natural impulses from the psychological point of view and consider it harmful to renounce it. And still others regard sexual desires as love, without which life becomes uninteresting and sapless. There is yet another class of people, there is yet another class of people who often ask how the world can go on if this vice was given up. An extraordinary instance is of those who are setting the limits to sexual gratification but are opposed to its total. In this case, I presented all these divergent views and tried to remove the misconceptions embodied in them rationally and even scientifically, and that is a special purpose, and consequently the usefulness of this book. In fact, I wish to throw light on other subjects, as for instance on the common view that even the deities could not maintain chastity, so much so that Shankar too lost his heart once, and that Sri Krishna had a large troop of queens. All this only to bring home forcefully to the common man that these are just fictions, being beyond the limit of available space. This subject has not been dealt with, though referred to only slightly. The point of view enjoining on man to observe Brahmacharya, as expounded in this book, is based on the methods revealed to us by the Supreme Father, Supreme Soul, is all grace, and to whom you and we, all of us, are immensely beholden.
Hello everyone. So, Brahmacharya talks. I welcome you all in that. Okay. So, significance of Brahmacharya in the existing social setup. Okay. We turn the pages of history. We find that since the very start of the start is called what is called Dwapara Yuga. They are fools. Very start, first of all, what comes? Satya, then Dvaita Yuga, then
Dwapara Yuga. Okay.
Brahmacharya has been adopted as a part of individual effort. Are observed in the form of a rule to achieve spiritual purity, taking salvation as their arm, and renouncing their own and sannyasis. Mendicants and monks have been observing in continents in the Bharat. The religious minded people have limited this concept in the practice the first 25 years or so of the studentship to the period of time after 50 for the purpose of obtaining salvation. In former times, those who regarded sex in the family life as best based on the scriptures as dictated by nature considered indulgence outside this limit as sinful, and thus observed this canon in its limited space sense. But in many other countries, governments, educational institutions, sociologists, businessmen, dictators, and health services do not understand the right manner, the full importance of this canon, and what is more alarming is that is in the midst of the present speedy rise in the population. Okay. Which calls for immediate remedies, and this law of continence has not been properly appreciated and truly adopted. Thank you.
What you talks may you all are welcomed. Neglect of yoga and celibacy in social life. The practice of yoga was formerly considered the only means of God realization, but during the last 50 to 75 years or so, attention has been directed to the fact that the practice of yoga and contentance for the means of maintaining mental balance, which leads to peace of mind, which in turn sustains family and social life. In spite of these benefits and the prevailing situation brought about
by the problem of rise in population, unemployment, breakdown of law and order, scarcity, food, educational facility and health care, due stress, it's not being laid on the practice of continence.
So Brahmacharya Talks 11, I welcome you all. To check the growth of population, the government has afforded to one and all artificial means of birth control by spending millions on rupees of family planning centers, doctors, contraceptives, and on providing incentives thereto. However, if the same sums and the same manpower were employed for the purpose of instructing people on the immense benefit from Brahmacharya, it would go a long way in achieving their real welfare. This is the best method. This is the method which is not only natural but also righteous. Mahatma Gandhi, Acharya Vinoba Bhave, and several outer, highly evolved people have declared that even if by artificial means birth control could be achieved, the fact remains that our countrymen cannot escape becoming innovated, shone of the light of eyes and of bodily health, besides being subjected to an ever-increasing desire of sensuality, for the simple reason that feeling free from any burden of an increasing family or consequent obligations, they take with greater zest to a life of sensuality as the means, as they think of getting joy. There are some who are addicted to promiscuous sexual relationships using artificial method and indulging in adultery, with the result that the women too become increasingly given to violation of fidelity to their spouses. Western countries afford abundant example of this kind of behavior. The result is that principles of morality are being demolished one by one, and man has become increasingly habituated to sensuality, and he is growing apace into a puppet, a toy, and images of the methods of indulgence. Thank you.
So Brahmacharya Talks 12 May. I welcome you all. The Gita declares that sex lust produces anger, which in its turn causes confusion of the intellect. From this point of view, all the violent turmoil that is there in the society of revolutionary or revolutionary order disorders of today have their origin in the lack of continence among people. It would therefore be good if the government and those engaged in social service understood the importance of Brahmacharya as the basic solution of all the predicaments of the society
and of the country at large. It is incumbent
on all people to recognize that for want of Brahmacharya, the financial position of the country, its law and order, the people's health and their moral evolution are adversely affected. Observations of chastity is therefore the society's direst need. The government takes chastity to be but an individual concern or just an aspect of religion, so that in the family planning program, which is not accepted as part of women policy, neither through institutions of family planning nor through the literatures relevant to its book, written books, pamphlets and allied means of propaganda like the radio and the TV, nor even in the syllabus of educational institution has any work been done to bring down the importance of continence as a meaning of solving all the social problems. My considered opinion is that it would be will do good to the country if the different aspects of the Brahmacharya gains are made clear to the masses through the channels mentioned above. Not only to this, but to several other advantages comprehended in them. And the given below. Thank you. We'll continue tomorrow.
ब्रह्मचर्य टॉक्स 13 में आपका स्वागत है. वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ब्रह्मचर्य इन इंडिविजुअल लाइफ बॉडीली. ब्रह्मचर्य इज हाईली हेल्पफुल इन मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ द बॉडी. वन इज चेस्ट एज इन द एबिलिटी टू इम्यून सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीज. बॉडीली स्ट्रेंथ स्टैमिना फॉर वर्क ऑल्सो एज ऑल्सो जील इंक्रीज विद रिजल्ट एंड ऑप्टिमिज्म चीयरफुल एंड्योरेंस करेज एक्सेट्रा ग्रो इन हिम. बिकॉज पीपल डू नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ चैस्टिटी. देयर स्टैमिना सफर्स एंड डिजीजेस फाइंड देम ईजी प्रे ऑन अकाउंट ऑफ इंटेलिजेंस of overall angels. Instead of meeting God, they meet doctor now and then. By undermining his strength, man invites old age and innovation to compensate the loss of vitality. He resorts to vitamins, nutritious foods, wine and meat. In order to replenish his strength, he has to spend large sums, which he tries to earn through dishonest means. Thus he creates a vicious cycle, just as a dam built to store water augments the country's potential of generating electricity, besides the water itself being used to enrich a country by irrigating instead of inundating lands. The observations of self-restraint in this respect enables a man to store essential energy, by means of which man can accomplish for his country noble and useful tasks in the form of creative literature and art, by extending the frontiers of knowledge in every field. Thank you. We will talk to you in the next lecture. So I welcome you all to Brahmacharya Talks 14. So various advantages of Brahmacharya in individual life, we have discussed the bodily one. Now today we will discuss about mental one. Closely related to this aspect is the fact that Brahmacharya brings determinations to one's thoughts, develop his willpower and increases concentration. That is why it is necessary for man to acquire knowledge and understand this profound truth, where concentration, resoluteness and willpower are there man easily crosses hurdles, crosses obstacles on his way to success, which manifests itself in his happiness, enthusiasm and progress. Thank you. We'll have this short lecture, okay? Thank you. Amateur Talks Part 15 mein aapka sabhi ka swagat hai. So we are discussing various advantages of celibacies in individual's life. Intellectual. We were discussing the intellectual one. Intellectual. Well, it is plain that celibacy is another name for discriminating faculty. Not only do the intelligence capabilities grow, but also the intellect itself becomes righteous. Not only is reasoning faculties of weakened, but also it becomes positive and true reason. This is an undeniably great achievement, because though through it man does not get caught in the whirlpool of evil, he becomes truly great because he understands what contentment, goodwill and truth means. Thank you and have a nice day. Dhanyavad. God bless you all. Thank you. Various advantages of celibacy in individual's life: mental, intellectual, moral and spiritual. Thank you. So, importance, various advantages of Brahmacharya in the individual lives. So benefit is also moral. Brahmacharya is undoubtedly the foundation of morals. But this means one's outlook, thoughts, habits are purified and one gets over the temptations and allurements and thus succeeds in reaching the heights of rectitude. Thereby one acquires abundant strength, becomes fearless, honest, right and fit to uphold truth. Thank you. Brahmacharya Talks Part 18 mein aap sabhi ka swagat hai. You all are welcome dear. And I'm obliged to see you all here. Okay. The various advantages of Brahmacharya in individual's life. Spiritual one. Brahmacharya is the first very step in the way to spiritual progress. Without its realization of self and of God is impossible, because when man is attached to his mind, body is fickle and his reason cannot go so far as to understand what the physical body really is, for nor can he exercise control over its debasing tendencies. Therefore, if man understood that bliss in the present life is the highest bliss, achievement and full possession of righteous happiness, and deity status in future is a desideratum, he will surely observe Brahmacharya. Financial, sexual gratification deprives one of strength, and to make up for loss, one feels the necessity of having in good quantity. nutritious food or of having to consult doctors or to be able to have tonics, vitamin tablets, injections to tone him up. Having a large family, he has to spend a lot on and the sensual one gets addicted to the cinema, to wine, to fashions, and to dining at hotels in order to extract pleasure. All these need money, and the need for more money prompts him to take a dishonest way of making money. Besides being worried a lot about how to meet his needs, owing to this worry and to dishonest actions, his tendency towards indulgence increases apace, so that he might find some relief from worry. Isn't he thus caught in a vicious cycle? On the contrary, a chaste person is safe from distractions and is contented and simply in his ways, and consequently truly peaceful and happy. The social aspect of it needs particular mention. The individual uplift thus means moral, financial, and cultural uplift of society. Besides, we cannot overlook an important fact that the three main formidable results of population growth will be eliminated. On account of the population explosion, serious poverty has prevailed in our country, and want of proper housing is being felt increasingly. Besides, unemployment to the extent that the engineers and doctors are idle for want of work, there is no point in procreating children only to be cast later on into the lap of the hunger, unemployment, and misery. Secondly, the rise in the population has devalued man and has spread immorality and lawlessness all around. Society has turned into an immense crowd, the very presence of which has adversely affected man habits and nature and his brains. Not only this, man today is uneasy and has lost his dignity and value. He is a slave to wine, prone to suicide, liable to go to jail and to be charged with bullets and lorries. Thirdly, the whole atmosphere is tainted. Even the water and the sky are out of joint. It is therefore man's duty as member of society to practice continence and ensure his welfare and the welfare of others. Thank you. I will stop here.
Celibacy is like
sensuality is there. Even though animals are sensual, they will die very easily.
What do you say of human beings without self-control? So you cannot do a long lasting service if you are not a celibate. So for this you need to be a celibate. Thank you.
Praise of Brahmacharya, a denunciation of sex lust in Bhakti Mark. From the point of view of Jnana, lust has been stated in the Gita regarding Mahashatru as sworn enemy of known mankind. So, and thus the main gateway to hell. From lust arises anger, which in turn results in debasement of one's intellect, leading ultimately to total annihilation, that is complete ruin of man. From the point of view of yoga, celibacy is included in the concept of restraint, and even according to the tradition, a yogi cannot have sexual relationship with anyone. He has to control vicious tendencies, and hence lustfulness also obviously is a degrading tendency. Okay, so what I am telling you is a degrading, hence lustfulness obvious is a degrading tendency. From the point of view of renunciation, where sexual gratification has been severely condemned in Yoga Vashishta, in Vairagya Shatak, Shankaracharya, and in his Vivek Chudamani, among 10 features of the religion, depicted the moment of control of one's senses is one. All this is right.
so far as it goes. I am now giving extracts from the saying of saints and devotees in order to show that they have also stated in unambiguous terms that the lustful person cannot be a devotee, nor even ever can remember God with a sincere heart. Let us take the eminent saint Kabir.
ब्रह्मचर्य वर्ता में आपका स्वागत है। हमने आपको बताया था कि हस्तमैथुन कैसे बहुत बुरा होता है सेहत के लिए। कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना कि बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे संपर्क में आए हुए कुछ लोगों ने, क्योंकि उन लोगों को बहुत समस्या थी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर आप बता सकते हैं कि हस्तमैथुन अच्छा होता है या बुरा होता है। तो मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्यों मना किया? क्योंकि देखिए, इसलिए मना किया क्योंकि एक बार अगर आप, बहुत लोग कहते हैं ये कम करिए, ज़्यादा नहीं, एक दिन, एक महीने, एक हफ्ते में दो बार करिए, तीन बार, इससे ज़्यादा मत करिए, एक दिन में 10 बार, दो तीन बार से ज़्यादा ना करिए तो ठीक रहेगा, एक हफ्ते में एक दो बार कीजिए। नहीं, मैं कहता हूँ ना करिए, बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप इसकी लत में पड़े तो आप पक्का, आपका मरना जाए से बहुत जल्दी आप मरेंगे, आपकी इम्यूनिटी ख़राब होगी, हर एक चीज़ ख़राब होगी। और कुछ लोग हो सकते हैं जो जी जाएं, एक्सेप्शन को लेना मूर्खता है, मतलब विवाद को ले, मतलब जो कि अपवाद है उसको लेना मूर्खता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहुत लोग कहे कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, बहुत हेल्दी होता है, मसल बनती है, बॉडी बनती है, ये बनता है, तरह तरह का ज्ञान बनाते। लेकिन हमने जितने उन्हें बताया कि बाल चली जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, तुम इम्पोर्टेंस हो जाएगा, कैंसर 4 तरह के हो जाएंगे, और क्या कहते हैं, बच्चे ही नहीं आप पैदा कर पाएंगे, और क्या कहते हैं, हाँ, आपको असली सेक्स में सेक्स नहीं करेंगे, और वो वही चीज़ करेंगे। और सेक्स का अर्थ क्या है, मतलब कि ये जो क्रिया होती है ये क्यों की जाती है? ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करनी चाहिए, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। ये क्रिया आपकी सुख के लिए नहीं है। सुख के लिए भगवान ने बहुत सी क्रिया दी है। आप प्रसाद खाइए, मतलब कि कुछ अच्छा खाने में खाइए, ठीक है, आपके 5 दिन से कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखिए, ठीक है, बुरा नहीं, ये नहीं कि रंग से बेकार आप वो उपन्यास पढ़ने लगे, वो सब बहुत बेकार चीज़ है। अच्छी चीज़ मतलब कि कोई अच्छी किताब पढ़िए, कोई पॉजिटिव, मतलब कोई, हाँ, कोई अच्छी किताब जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको शक्ति दे अंदर की, आपको खुश रखे, ऐसी किताबें पढ़िए। ऐसी नहीं जो आपको टेंशन में डाल दे, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। आप सबको ये चीज़ बता दूँ, मेरे पास बहुत लोग आए, मैं बहुत लोगों का सुनूँ, वो लोग कहते हैं सर बहुत हेल्दी होता है, डॉक्टर लोग कहते हैं लिमिटेड करना चाहिए, लिमिटेड से ज़्यादा। देखिए, मैं आपको एक समस्या बताता हूँ कि हाँ, चलिए मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से मैं बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगे, हाँ 90% लोगों से ज़्यादा लिमिटेड में करें, ठीक है, 90% से ज़्यादा, ठीक है, 2 लोग तो उसमें से 5% लोग करेंगे बहुत ज़्यादा और मरेंगे बहुत जल्दी, लेकिन जो 5% होंगे वो छोड़ देंगे इसको करने के बाद, वो अच्छे होते हैं, और वो बहुत मुश्किल से होते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सब बेकार चीज़ है, और वो सफल व्यक्ति होते हैं। और वो जो 90% लोग होते हैं ना, वो भले ही थोड़ा बहुत करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर थोड़ा बहुत करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर उन लोगों की ज़िंदगी इसी चीज़ में ख़राब हो जाती है कि ये करना है कि नहीं करना है। मतलब कि आप लोगों को जैसे कि लगता होगा कि ये जो क्रिया है ये बहुत आनंद दे रही है, स्टार्टिंग में लगता है, उसके बाद आपको लगता है हमको फंसा रही है, हम नहीं करते तो नहीं लग, उसके बाद आपकी मजबूरी बन जाती है। जैसे सिगरेट पीते हैं, पहले तो अच्छा लगता है, ठीक है, कोई मैं अपनी मर्ज़ी छोड़ सकता हूँ अपनी मर्ज़ी, लेकिन उसके बाद में आप फंस जाते हैं, फिर आपको पीना ही पड़ता है, उसके बाद एकदम बुरी लत लग जाती है। तो इसकी भी वही है, तो आप इसे जब छोड़ना चाहेंगे नहीं छूटेंगे, इसके लिए आपको बहुत मेहनत और संघर्ष करना होगा बिल्कुल। और ये कभी एक दिन कर लिया नहीं, ऐसा जो सिस्टम है ना कि एक दिन कर लिया फिर उस दिन कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप वहाँ भले ही आप जितना भी संभाल लो, लेकिन आप एक हफ्ते में अगर आप कर, तो अगर आप खा लिए तो 4 से 5 बार करेंगे, मैं बता रहा हूँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक दो बार से ज़्यादा बहुत लोग मुरमुराते नहीं करते, नहीं, अरे हम सब जानते हैं कि चाहे जितना हो जाए
एक दिन में एक बार आपके विचार तो बहुत बार दसों सौ बार आएगा, लेकिन आप मानेंगे तो एक आध दो बार में तो पक्का। लेकिन क्या हुआ, इससे आप सुधर गए? नहीं, आप इससे अपने जो आप आपको हमारे शास्त्रों में कहा है, मातृवत परतरेषु पर्तरेषु लुष्टत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। अपने अलावा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि पूरा बताऊँगा तो फिर आप लोग सुनेंगे ही नहीं, इतना कम्प्लेक्स है। जो कि मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, पंडित होते हैं, जो मतलब ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को ही माता जी नहीं कहते, बाकी सबको, जितनी भी लड़कियाँ, बाकी सब माता जी। हाँ ठीक है, वो माता जी सुंदर है, और बाकी ठीक है माता जी हैं, ठीक है कृष्ण की पत्नी है, मतलब कि भगवान की पत्नी है, कृष्ण भगवान है तो उनकी पत्नी है, ऐसे आप मान लीजिए, बाकी सब उनकी पत्नी है। लेकिन अगर आप वो सबको देखेंगे ऐसी नज़र से, तो आप किसी को भी ऐसी नज़र से देख सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरा इशारा? और ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सब चीज़ें बहुत बुरी होती हैं, इन सबसे बहुत दूर रहिए। एक बार भी करने का प्रयास मत करिए, एक बार आपका लालच आएगा। आर्मी कहता है एक बार सिगरेट पी ले बाद में ना पीना, एक बार खा ले मांस बाद में ना खाना, एक बार शराब पी ले बाद में ना पीना, एक बार ड्रग ले ले बाद में ना लेना। इसी तरीके से लत लगती है और इसी तरीके से जीवन खराब होता है, जीवन बेकार होता है। इसीलिए एक बार भी नहीं, कभी जीवन में नहीं, अगर आप नहीं किए तो आप सतर्क हो जाइए, कभी भी अगर कोई जितना भी आपको बोले कभी नहीं करना, एक बार भी नहीं। क्योंकि आप अगर इसमें आ गए तो आप नहीं संभाल सकते आपको, आप बोलेंगे एक दो बार लेकिन होगा तीन चार बार, आप सोच बोलेंगे एक बार दो तीन बार होगा ही, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। और आपके अंदर इतना बुरा लगेगा, अंदर आपको इतना घृणा होगी अपने से, इतना आपको अपने से ही बुरा लगेगा, इतनी घृणा होगी अपने से, कुछ कहने को नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा और आप हमेशा अशांत रहेंगे, आपको हमेशा आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे और आपको हमेशा रोग होंगे और आपका कैरेक्टर एकदम बेकार होगा, आप फोकस नहीं कर सकते, आप जीवन में सफल होना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे और मांस खा के सही कर लेंगे, अरे भैया यहाँ पे आप ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है सेमन जो है, ठीक है जो वीर है वो आप बना लिए, किसी ना किसी कुछ खा के न्यूट्रिएंट खा के ये वो करके बना लिए थोड़ा बहुत, ठीक है जो भी हो आपकी, और थोड़ा बहुत आप कंट्रोल भी, फिर भी आपका बहुत बुरा है। क्यों आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जो आप ये चीज़ किए ना, इससे क्या होगा, कुछ हुआ नहीं, कुछ बदला नहीं, क्योंकि आपकी जो संकल्प शक्ति है वो तो चलेगी ना आपसे, आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो आप कहते हैं कि मैं जो करना चाहूँगा वही करूँगा, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, आप तो दबाव में आ रहे हैं, आपको लत अपने दबाव में ले रही है, तो आप फ्री नहीं रहे, अब आप मुक्त नहीं रहे, आप नशा नशीले हो, नशीले पदार्थों के लत में आ गए, अब आपको लत लग चुकी है, अब आप रो चाह के भी नहीं रोक सकते, आपकी संकल्प शक्ति जा चुकी है। तो मांस होने का क्या, बाहर की शारीरिक शक्ति होने का क्या मतलब, शारीरिक शक्ति भी बहुत बेकार होगी आपकी, बिल्कुल आप मांस खाएंगे हाँ थोड़ा बहुत अच्छा खासी बॉडी बनेगी, कितना आपका मन तो दुखी रहेगा, अगर मन के क्या, मन के आगे जीत है, मन के आगे अगर मन चाहे तो जीत सकता है, मन चाहे तो हार सकता है, अगर कोई विकलांग है उसके मन की शक्ति है तो किसी भी चीज़ को हरा सकता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है, लेकिन विकलांग है उसका मन अगर कमज़ोर है तो वो हार जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका मन कमज़ोर है तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपका मन अगर ऊपर है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। संकल्प शक्ति बहुत मैटर करती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग कहें एक बार कर लो दो बार, कुछ नहीं, कोई भी पदार्थ हो इंटॉक्सिकेशन नहीं करना आपको, कोई भी नशा नहीं करना, ना सिगरेट ना मांस ना मदिरा ना जुआ, किसी भी प्रकार का, ठीक जुआ, ठीक है जुआ भी नहीं, और मीट वीट भी नहीं, नॉन वेज बिल्कुल नहीं, और ये क्या कहते हैं जो स्त्री संघ है, अवैध स्त्री संघ, आप जिससे शादी ना करें, जिसको अपनी बीवी ना, उसको तो आपको माँ मानना चाहिए, और स्त्री संघ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अवैध। और देखिए मदिरा, मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेशन नहीं, कोई भी इलिसिट सेक्स नहीं, तीसरा कोई भी गैम्बलिंग नहीं, ठीक है, और कोई भी नॉन वेज नहीं, बस इतना आप नियमों का पालन करिए, कभी भी लत वाली चीज़ों को कहीं ना करिए, कभी एक बार नहीं। सो कल हम बता रहे थे आप सभी को दैट हस्त मैथुन के बारे में, दैट इज मास्टरबेशन। ये बहुत बेकार चीज़ है, मैं आपको जैसे कल बताया, कभी अभी कभी नहीं जिंदगी में, एक भी बार नहीं, कभी नहीं करना चाहिए आपको। मैंने उसका रीज़न भी उसको नहीं, आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है इससे और क्यों नहीं वर्क करना चाहिए। क्यों वो सब तो बताए हुए कि थोड़ा सा बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये जो चीज़ है ये क्यों बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। तो हम लोगों ने बहुत लोगों का नाम सुना, हिटलर का नाम सुना है। हिटलर क्यों मरा? क्योंकि वो पहले ना, पहले जो था वो पहले बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री के लिए पैट्रियोटिक था, लेकिन वो धीमे 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 उसके अंदर इतना लस्ट आया, वो एलाइट सोसाइटी में रहता था, इतनी सारी गर्ल्स उसका, उनमें से कईयों पे उसका दिल आ गया। और आप सब जानते हैं क्या हुआ, उसको एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी, और बहुत ज़्यादा आप समझ तो गए होंगे इंटीमेसी शो करता था। एंड यू कैन सी इवन द नेपोलियन बोनापार्ट एंड ऑल्सो यू कैन सी अभिमन्यु, दो इट इज़ अ स्पिरिचुअल एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू रिटर्न द प्लैनेट वेरी फास्ट, बट इट इज़ ऑल्सो शो दैट अभिमन्यु हु हैज ब्रोक द सेलिबेसी वन नाइट बिफोर हिज डेथ, दैट्स वाई हिज डेथ हैज़ अकर्ड, अदरवाइज ही वुड हैव इवन even say recover in that situation of that chakravyuha, what he has broken his celibacy one night before with his wife, that's why sad that happened. So it's, you are seeing that such great souls have done, even the one of the greatest philosophers of, so like Socrates says, one man come to Socrates, I think Socrates he was, okay, that please tell me how many times we can do sex. He said one in one life. Once in one life. He said, please reduce the limit. He said one in 1 year. He said, please reduce limit more. He said one in 1 month. He said, please reduce limit one in 1 week. He said, please reduce the limit even more. So he said, then put your coffin on yourself, because you are going to die very, very soon. So this is the importance of brahmacharya we should stay. And there are many defects that can come. First of all, we are moving the eye. Your eye will become very extremely weak. You will see many people use the lenses. Or you can say chashma lagate. Mujhe ab tak nahi laga. Kyun? Aap samajh gaye honge, main sab nahi karta. जो फालतू काम करते हैं सब, भले ही बहुत इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन उनका ईक्यू अच्छा नहीं होगा, उनका एसक्यू अच्छा नहीं होगा, और उनका जो माइंड होगा बहुत टेंस्ड होगा। इनसे देर आर स्ट्रेस्ड लॉट, समझे? ओके, बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे, बहुत ही हाई क्लास दिखेंगे। यू कैन से बहुत ही कॉरेंट रहेंगे, कॉरेंट, ठीक है ना, ऑकरेंट, ओके, एड करेंट रहेंगे वो लोग, देखेंगे, ठीक है, वो बहुत ही हाई फाई रहेंगे, लेकिन क्या होगा आप सब जानते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बीमारी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, आई से, आई में आपकी कमज़ोर हो जाती है और आपको ब्लाइंडनेस तक हो सकती है अगर आप ये ज़्यादा करेंगे। दूसरा आपको बताता हूँ, दूसरा है आपके हेयर्स, किसी के हेयर अगर 15-16 साल से पहले ही वाइट होने लगे तो इसका साफ मतलब है, साफ मतलब 99% मतलब है कि वो हस्तमैथुन करता है या मास्टरबेशन करता है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, पागल खाने होते हैं ना, आप जानते होंगे मैड पीपल जो होते हैं, उनमें से रिसर्च की गई थी, तो उनमें से 100 में से 95 लोग मास्टरबेशन करते थे, हस्तमैथुन करते थे, उसकी वजह से वो पागल, 5% लोग इधर उधर कारण से। आप देख रहे हैं पागल खाने में इतने लोग हैं तो किस वजह से वो पागल हुए? आर यू सीइंग द कंसिक्वेंसेस? आप देख रहे हैं आप इससे पागल भी हो सकते हैं, ओके? और मैं आपको ये बता दूं, आई बता दिया, ये बता, आपका नोज नहीं, नोज में कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, हाँ, आपके जो गाल हैं, आपके जो गाल हैं ना, उन पे काले काले स्पॉट्स पड़ने लगेंगे, मम्मी लोग सोचती होंगी, पापा लोग सोचते, बहुत मेहनत करता है, असली में क्या मेहनत करता है वो वही जानता है, और हम आपको बता रहे हैं बहुत, मतलब कुछ लोगों के होता है लेकिन बहुत ज़्यादा झाई पड़ जाती है उसको, मतलब बहुत लोगों को पड़ती है, मेहनत की वजह से भी पड़ती है या धूप की वजह से पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को इस वजह से पड़ती है, ठीक है। और उनके अगर पूरी आँखों की तरफ रहे, मतलब आँख के नीचे अगर पूरा काला है दोनों तरफ, ठीक है, और नाक के पास पूरा काला है, नाक के इधर किनारे पे, ठीक है ना, तो मतलब वो 100% श्योर हो जाए वो करता है ये चीज़ फालतू में। आपको बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत ही बुरी है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दैट दिस इज़ एन एक्सट्रीमली बैड हैबिट दैट विल लेट यू डाई, ये आपको मरा देगी, आपको मार देगी। Even Swami Vivekananda said, I don't have even a single thought of sex or lust in my heart. He was so true. Yesterday he said, one time I was offered that some thought may come, but it hadn't come. So he said, if you have the will, you can do. Nobody can stop you. So I'm not stating that your zeal will be lost, okay? Your enthusiasm will lost, your consistency will broke, your habits will more degrade, you can turn to other things if you are depressed, like alcohol, cigarette, and etc., intoxications, which you will be inebriated, you can become inebriated, you can become intoxicated as a disadvantage of it, because its depression causes this, you can become a bacchanalian, yes, you can become a bacchanalian. And you'll be glutton for spicy things, you'll be glutton for you can say market things which you will like to eat, okay, and you don't like the sada khana, aapko acha nahi lagega. Main aapko ek cheez aur bata dun, bilkul bilkul suniye aap log, aaj aapko main aapko suna hi dun acche se. That ye jo hoti hai na bahut buri aadat hai, isse aapko maine bataya aankhon mein hota hai, theek hai, aapke जो सेरिब्रल होते हैं, जो स्मॉल ब्रेन कहते हैं जिसको, वो भी इससे फट सकता है, ठीक है, इससे फट सकता है ये सब चीज़ करने से. और क्या होगा, और देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, और बाल सफ़ेद पड़ सकते हैं, मैंने बताया, हाइट नहीं बढ़ेगी आपकी, बिल्कुल हाइट नहीं बढ़ेगी. कुछ लोगों की जेन्युइन रीजन से नहीं बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों की ये करने से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है हाइट, और कुछ लोगों की बहुत कम रहती है, बहुत कम. ये नहीं सब में होती है, सब में ऐसा नहीं होता, जो लोग ऐसा नहीं करते उनके में नहीं होता, लेकिन मेनली हाइट लोगों की मॉडरेट ही रहती है. इंडिया में तो लोगों की हाइट घटी रही है, लेकिन ये बता दूँ मेन रीज़न यही है हाइट. वैसे इतना ज़्यादा कनेक्शन हाइट का इसके साथ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, क्योंकि देखिए कैल्शियम इसमें लॉस होता है, और कैल्शियम आपकी बोन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो कॉमन सेंस है कि हाइट पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, ठीक है ना. और क्या बताऊँ मैं आपको, और बताता हूँ, और सुनिए, आपकी जो ये ब्रेन होता है ना, मेमोरी आपकी बेकार हो जाएगी, आप कुछ याद नहीं कर पाएंगे, बहुत छेड़छेड़ापन, बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा आएगा कुछ कहने को नहीं, आपको अपने आप को ही गाली देते रहेंगे, यार मैं क्या कर, मैंने क्या बहुत गलत काम कर दिया. यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ क्वाल्म, ओके, क्वाल्म, ओके, यू विल बी फाउंड योर सेल्फ इन क्वांडरी और डिलेमा, वॉट टू डू इन लाइफ, वॉट इज़ योर एम इन लाइफ. और पीपल ज़्यादातर लोगों का बुरा हश इसी वजह से होता है क्योंकि उनका कोई एम नहीं होता. अगर आपका कोई एम है आप उसके पीछे लगेंगे, वरना आप खाली काम खाली समय में यही सब करेंगे, तो समझ तो रहे हैं ना. तो अब आप पूछेंगे कि और सर क्या डिफेक्ट होता है, और भी बता रहा हूँ, सुनिए मैं आपको पूरा बताऊँगा, लिसन. क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया क्या, इसके बहुत सारे डिफेक्ट बताए, ये सब बताया कि ये सब आपको बहुत नुकसान करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि आपकी इन सब चीज़ों पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन और किस में इफेक्ट पड़ेगा. हाँ, बहुत लोग इग्नोर, डॉक्टर भी कहते हैं बिल्कुल करना चाहिए, वो लोग खुद करते हैं, लेकिन वो तो खुद जानते हैं ना, वो लोग खुद झेलते हैं बहुत ज़्यादा. लोग दवा खा खा के तो जीते हैं, लेकिन आपको वो लोग और टेंशन में, उनको क्या पता इस चीज़ के बारे में, उनको क्या पता, वो पढ़ लिए बस मेडिकल की किताब की, ऐसे बनता है, वो थोड़ा नहीं जानते. हाँ ठीक है, उन्हें पता है कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें 100% ऊपर से गलत पता है. हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, उन्हें कहते हैं स्पर्म आपको निकलना चाहिए, तभी हेल्दी स्पर्म बनेगा. साइंस भी कहती है कि एक स्पर्म में कम से कम 40 ब्लड होता है, 40 ब्लड ड्रॉपलेट होती है एक ब्लड, मतलब एक स्पर्म ड्रॉप में, एक स्पर्म की ड्रॉप 40 खून की बूंदें, आप खुद सोचिए आपका कितना स्पर्म निकल रहा है, तो आप उतने ही जोड़ लीजिए, उतना ही खून की बोतल उनके उतना ही खून आपका निकल गया। सोचिए सोचिए, सोचने वाली बात है। लेकिन असली में एक एक स्पर्म ड्रॉप में कम से कम 80-90 बूंदें होती हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपका एक मतलब मेरे को नहीं अच्छे से ना आइडियली पता, लेकिन हाँ जितना निकलता है उसमें अच्छा खासा निकल जाता होगा आपका खून, क्योंकि एक बूंद तो निकलेगी नहीं, दैट्स पॉसिबल। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो शायद एक दो बूंद हो जाए, लेकिन जो बहुत कम करते हैं, मतलब थोड़ा भी कम भी करते हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना करें इतना ज़्यादा आपका नुकसान हो रहा है, आपका ब्रेन डैमेज होगा, क्योंकि ब्रेन का फूड है, ब्रेन को फूड कहाँ से मिलेगा, इससे वो क्या हो जाएंगे, इंसेन हो जाएगा, इंसैनिटी आ जाएगी, आप पागल हो जाएंगे, पागल वाली हरकतें करेंगे, और आपके अंदर बहुत एविल इंटेंशंस रहेंगे। यू विल नॉट इवन स्पेयर योर सिस्टर और मदर फ्रॉम योर बैड आइज, यू मे परफॉर्म एन एक्शन ओके, बट यू वॉन्ट स्पेयर इवन योर मदर एंड सिस्टर। ठीक है, और क्या सर, और बहुत कुछ है, और क्या है, बहुत कुछ है सर, बताऊँ आपको, सुनना है, सह पाएंगे, सुनिए फिर, इससे आपको इतना नुकसान हुआ, और क्या नुकसान होगा, सुनिए इसमें का नुकसान बताएं तो मैं आपके एक पूरी वो बन सक, इससे ना आपकी एक नस होती है, नाड़ी होती है मनोवाहा, मतलब एक नाड़ी होती है मनोवाहा, आप जैसे कि आप देखे होंगे जूस निकालते हैं, जूस ऐसे अगर आप मैनुअली जूस निकाल रहे हो जूसर से नहीं, ठीक है, तो कितना उसको मतलब ऐसे दबाना पड़ता है तब जाके जूस निकलता है ना, तो वैसे ही आपकी, मैं बताता हूँ लोग क्या कहते हैं, मतलब साइंस क्या कहती है, एपिडर्मिस टेस्टिस में एक जगह है, वहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है, और जब स्पर्म को ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकल के ऐसे जाके निकल जाता है, ये गलत है, बिल्कुल कंसेप्ट ही गलत है। अगर स्पर्म बनता है तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, वहाँ स्टोर नहीं रहता, मूर्खता है साइंस की, दे शुड डू मोर एडवांस रिसर्च, क्योंकि जितनी भी उनकी रिसर्च है दे आर ऑल फेक मोस्टली, बिकॉज आप देखेंगे साइंस बदलती रहती है, कभी कहती है ये चीज़ थी सही, और फिर उसके बाद अगली थ्योरी आ जाती है, फिर अगली थ्योरी आ जाती है, फिर साइंस इज़ नॉट 100% परफेक्ट ओके, सो दैट्स वाई बिलीव इन स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स जो कहती हैं, स्क्रिप्चर्स कहती हैं कि हाँ आपका स्पर्म बनता है, फिर बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब उसे एब्जॉर्ब अगर कोई चीज़ कर लिया, तो अगर उससे आप जैसे नींबू ने जूस एब्जॉर्ब कर लिया, अब जब आप नींबू को दबाएंगे तब जाके नींबू का जूस निकलेगा ना, वेन यू विल स्क्वैश इट देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ जूस ना, तो वैसे ही यो आपकी सारी नसों को स्क्वैश करती है मनोवाहा नाड़ी, और जो फिर उससे जूस निकलता है, जो फिर उससे वो निकलता है वो होता है आपका स्पर्म। सोच लीजिए कितना कठिन प्रोसेस, इससे आपकी पूरी नसों नाड़ियाँ हिल जाती हैं, आपका नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, सो यू शुड नेवर डू दिस, रिमेंबर दिस, नो एंड नेवर फॉर दिस थिंग्स, सो व्हाट यू हैव टू डू नॉट डू, सो लिसन, नो इंटॉक्सिकेशन, योर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, एंड नो नो यू विल ऑल टेल मी प्लीज, no gambling, no illicit sex, no intoxication, and no meat eating, okay, meat eating, so bye everyone, I think you all have understand this topic further, very clearly, कि इसका कोई advantage नहीं, सिर्फ disadvantage है, ठीक है, तो आप please, मैं आप सबको कहता हूँ, अगर कोई भी है तो बहुत serious हो जाओ, छोड़ो हमेशा, so, I welcome you all to Brahmacharya Talks, so, praise of Brahmachari and denunciation of sex lust and sex lust in Bhakti Marg from the point of view of Gyan, lust has been as stated in Divine Gita regarded as Mahashatru, okay, in Gita it is regarded as Mahashatru or Swan enemy of mankind, and thus the main gateway to the hell. From lust arises anger, which in turn results in debasement of one's intellect, leading ultimately to total annihilation, a complete ruin of man. From the point of view of yoga, Brahmacharya is included in the concept of restraint, and even according to tradition, a yogi cannot have sexual relations with anyone. He has to control his vicious tendencies. Hence, lustfulness obviously is a degrading tendency from the point of renunciation. Vairagya, sexual gratification has severely condemned in the Yoga Vashishtam by Bhartrihari in Vairagya Shatak and by Shankaracharya in his Vivek Chudamani. Among the 10 features, dharma, religion, as depicted in the Mahabharata, control one of senses is one. All this is right so far as it goes. I'm now giving extracts from the sayings of saints and devotees in order to show that they have also stated in unambiguous terms that the last full person cannot be a devotee, nor ever can remember God with a sincere heart. Let's take the eminent Saint Kabir views, the lewd and the angry and the greedy cannot be bhakta. Okay, the brave heart has forsaken caste, creed and color is the one that one can be a true devotee. Forsaken caste, creed and color is the one that can be a true devotee. Thank you, everyone.